अगली सूरत सबा है। एक मुल्क एक कौम के नाम पर मलका सबा थी और एक मुल्क था। पूरी सूरत में जो रंग आपको दिखेगा वो नाशुक्रियों का दिखेगा, कुफर यानी नाशुक्री और शुक्रगुजारी यानी अल्लाह की बात को मानना इंसान के लिए कैसे अहम है। हम इसमें देखेंगे कि जब अल्लाह ताला हमें नेमते देता है तो उसके बाद हमसे कौन से रवैये चाहता है। बड़ी मारूफ कौम थी, जरबुल मिसल थी, उसकी तरक्की की दास्तानें ऐसी हैं जैसे आज के दौर का कोई बहुत ज़्यादा खुशहाल मुल्क हो, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनके सारे रिसोर्सेज एक एक करके ख़त्म कर दिए और फिर एक वक्त आया कि उनको बातें बना दिया। हम इस सोच के साथ इसको पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमें ना शुक्रियों से बचा के शुक्रगुजार बंदियाँ बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير। حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، हर चीज को वो जानता है और रहीम और गफूर है। हाईलाइट करें, अपने लिए सोचिए जो कुछ मेरे दिल में आता है अल्लाह को उसकी भी खबर है, तो दिलों की इस्लाह करनी है। मुनकरीन कहते हैं क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही। कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। इससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी है ना जमीन में, न जर्रे से बड़ी और न इससे छोटी, सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। ये क़यामत इसलिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनके लिए मग़फ़रत और इसके करीम है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान लाकर नेक अमल की तौफीक दे और हमारे लिए मग़फ़रत और इसके करीम को आसान कर दे। और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए जोर लगा दिया, इनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अज़ाब है। हाईलाइट करें और दुआ कर लें कि अल्लाह हम तेरी किताब की आयतों को नीचा ना दिखाएं खुद को बड़ा समझते हुए। ए नबी इल्म रखने वाले खूब जानते हैं जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया वो सरासर हक है, वो खुदा अजीज़ो हमीद का रास्ता दिखाता है। मुनकरीन लोग कहते हैं हम बताएं तुम्हें एक ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा मुंतशिर हो चुका होगा, इस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ घड़ता है, ये जुनून लाहक है। नहीं बल्कि जो लोग आखरत को नहीं मानते वो अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं, वो बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी इस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए? हम चाहें तो इन्हें जमीन में धसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें रजू करने वाला बना दे। आगे आप शुक्र गुजारी की मिसाल पहले आएगी हजरत दाऊद और सुलेमान की सूरत में। वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फजला, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास से बड़ा फजल अता किया और हमने हुक्म दिया कि पहाड़ों इसके साथ हम आहंगी करो, और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। हमने लोहे को इनके लिए नरम कर दिया इस हिदायत के साथ के वो जरहे बना और इनके हल्के ठीक अंदाजे पर रख। ए आले दाऊद नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो इसको मैं देख रहा हूँ। ये है अल्लाह का खूबसूरत असूल, नेमतों से फायदा उठाओ, खूब अच्छे काम करो, इंसानियत को फायदा दो। अल्लाह ने हजरत सुलेमान की सूरत में उम्मत मुस्लिमा को एक रोशन मुस्तकबिल दिखा दिया कि जब मुसलमान दीन और दुनिया में तरक्की करेंगे तो दुनिया के लिए कितना बड़ा नफा होगा। हजरत दाऊद उसकी मुंह बोलती तस्वीर है। वली सुलेमान अर्रीखा, और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख़र कर दिया। सुबह के वक्त उसका चलना एक महीने की राह तक और शाम के वक्त इसका चलना एक महीने की राह तक। हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बना दिया और ऐसे जिन उसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से इसके आगे काम करते थे। इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता इसको हम एक भड़कती हुई आग का मजा चखाते। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहते, ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हौस जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी दे गए। ए आले दाऊद अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में बहुत ही कम शुक्र गुजार है। इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा, वक़लीलुम मिन इबादी अश्शुकुर। 3 सेकंड तक इस पे गौर करें। मुझे ऐसे लगता है पूरे कुरान में इंसानों को शर्मिंदा करने के लिए कोई और आयत अगर ना होती तो सिर्फ ये एक आयत काफी है। मालिके कायनात नेमते देने वाला ये शिकवा करता है कि मेरे बहुत थोड़े बंदे शुक्रगुजार हैं। आप एक माँ की जुबान से ये जुमला सुने, मेरे बच्चों में बहुत थोड़े शुक्रगुजार हैं, मेरे बच्चे मेरी बड़ी कम कदर करते हैं, बच्चे तो मेरे अच्छे हैं बस उसमें एक ही शुक्रगुजार है, तो बाकियों के लिए शर्मसारी है ना। इतनी नेमते पाते हैं रब की, इतना खाते हैं, इतना लेते हैं, शुक्र कितना है। शुक्र के वक्त पे तो हमें शिकवे सूझते हैं, अमल के वक्त में हमें तावीलात सूझती हैं, तो शुक्रगुजारी है क्या? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे, इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी। और याद रखिए जिसने शुक्र करना है ना उसके लिए तो ये भी नेमत है कि उसको अल्लाह ने शुक्र का मौका दिया। हजरत दाऊद के गालिबन कौल है कि अल्लाह तेरा मैं शुक्र करता हूँ, ये भी तो एक नेमत है, बता इस पे मैं कैसे शुक्र अदा करूं। देखिए जो नाशुक्रे लोग होते हैं ना, जले कुटे दुखी परेशान, वो ऐसे लगता है लोगों को कि बहुत मजबूर है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा है वो नाशुक्रे होते हैं, जिसको आप अपनी जुबान में कहें कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह में ना बंदों के मामले में ना शुक्रा करे और ना अल्लाह के मामले में ना शुक्रा करे। फलम कदई नौतमादी, फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्नों को इनकी मौत का पता देने वाली कोई चीज इस घुन के सिवा ना थी जिनके असा को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान गिर पड़े तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब जानने वाले होते तो इसी जिल्लत के अजाब में मुबतला ना रहते। हजरत सुलेमान चूंकि जिन्नों से काम ले लिया करते थे, अल्लाह ताला ने उस दौर में मुसलमानों को इतनी तरक्की दी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और देगें और जो कुछ अभी हमने पढ़ा ये करवा लिया करते थे। हजरत सुलेमान ने बैतुल मकदस की तामीर शुरू करवाई हुई थी, जिसको आज भी आप सुलेमान के नाम से जानते हैं, हैकले सुलेमानी। तो हजरत सुलेमान की मौत का वक्त आ गया, अब अल्लाह चाहते थे कि ये काम पूरा हो जाए। हजरत सुलेमान ने अपने लिए एक शीशे का कहते हैं कमरा बनाया होगा या क्या होगा, वहां खड़े रहते जिन समझते कि वो आपको देख रहे हैं, तो हजरत सुलेमान उनको एक किस्म का ऑब्जर्व कर रहे होते थे। मौत आई तो वो वहीं खड़े रहे, ये अल्लाह की रहमत से हुआ, अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा किया। इस वक्त में लोगों के गुमान में ये था कि जिन्नों को गैब पता है, लेकिन अल्लाह ये साबित करना चाहते थे कि जिन्नों को गैब नहीं मालूम, तो जिन्नों को नहीं पता चल सका कि ये फौत हो गए हैं, तो घर बनाते रहे, महल बनता रहे, वो जो भी हैकले सुलेमानी था। इधर वो पूरा हुआ अल्लाह ताला के हुक्म से, वो जो लाठी थी जिसके पर टेक लगा के सुलेमान खड़े थे उसको दीमक आ गए, टर्माइक जो है वो आई और उसने खाया, वो लाठी खोखली हुई, वो गिरी, हजरत सुलेमान गिरे, जिन्नों को पता चल गया कि ये तो फौत हो चुके हैं, तो वो भी भाग गए। जैसे कुछ लोग उनके सर पे आप खड़े रहे तो काम करते हैं, आप उधर जाते हैं बच्चे आंख चुरा के फिर वही काम करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस एक वाक्य से हमें बहुत कुछ बता दिया कि अल्लाह अपने काम ले लेता है। याद रखिए मौत के बाद भी अल्लाह ने सुलेमान से दीन का काम ले लिया, उनकी डेड बॉडी को खड़ा करके। तो जिंदा इंसानों के लिए तो फिर कितनी ज्यादा इसमें नसीहत की बात है कि अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा काम ले ले कि हमारे बाद के लिए वो खैर का जरिया लोगों के लिए बनता जाए। अब इसके बाद से मलका सबा और जो मुल्क सबा था उसकी नाशुक्रियों की कहानी है, और मैंने और आपने इसको अपने अपने मुल्कों और अपने अपनी अथॉरिटीज की रोशनी में देखना है। अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया और मेरे अमल कैसे हैं, क्या मैं अपने किसी मामले में यानी बीवी होने के नाते कदरदान शोहर की नाकदरी तो नहीं करती, अपने बच्चों की नाकदरी तो नहीं करती, माँ बाप की नाकदरी तो नहीं, अपने मुल्क की नाकदरी तो नहीं करती, और सबसे बढ़कर इस्लाम की नाकदरी तो नहीं करती जो अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाल दिया। ये बहुत ही ज्यादा थॉट प्रवोकिंग वाकया है, और इसको पढ़ते वक्त हम खुद भी फील करेंगे कि वो कितनी नाफरमान कौम थी कि अल्लाह की नेमतों को उसने अपनी नाशुक्रियों से दूर कर दिया। लकत कान अली सबा भी मस्कनी माया, सबा के लिए उनके अपने मस्कन में एक निशानी मौजूद थी, दो बाग दाई और बाई, खाओ अपने रब का रिस्क और शुक्र बजा लाओ इसका, मुल्क है अमदा पकीज़ और रब है परवरदिगार बख्शने वाला। इतनी प्यारी अरबी के फॉन्ट में अगर आप देखें ना, कुलो मिन रिस्क रब्बी को वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर, और क्या चाहिए किसी कौम को, खाओ भी पियो भी और अब भी तुम्हें माफ करने वाला है, रब्बे गफूर है। आज हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की नेमतों को हम सही इस्तेमाल करें और अल्लाह की रहमतों को भी पा सके। मगर वो मुंह मोड़ गए, फारदू, ये इंसानों की अक्सरियत है, माल नेमत पाकर इसी तरह होती है। आखिरकार हमने इन पर बन तोड़ सैलाब भेज दिया, और इनके पिछले दो बागों की जगह दो और बाग इनको दिए जिनमें कड़वे कसैले फल और झाव के दरख्त थे, कुछ थोड़ी सी बेरियां भी थी। ये था इनके कुफर का बदला जो हमने इनको दिया, और नशुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी और को नहीं देते। और हमने इनके और इनकी बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमायाँ बस्तियां बसा दी और इनमें मुसफर की मुसाफत एक अंदाजे पर रख दी। चलो फिर इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ, मगर उन्होंने कहा रब ए हमारे रब हमारे सफर की मुसाफतें लंबी कर दे। एडवेंचरस थे ना, कहने लगे ये हमें मजा नहीं आता, ये इतने फल दरख्त हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने इनको इतनी हरियाली दी थी कि जब इनमें से कोई सर पे एक खाली टोकरी रख के किसी जंगल के अंदर से गुजरता, इससे पहले कि वो जंगल को पार करके दूसरी तरफ पहुंचता, खुद से टूट टूट के गिरे हुए फलों से वो बास्केट भर चुकी होती थी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें तो मजा ही नहीं आता, इतने फल हैं, दिस है, हमें तो लंबे लॉन्ग रूट चाहिए। सब दरख्त काट दिए होंगे उस दौर में भी, और कहा हमें तो लंबे रास्ते चाहिए। अल्लाह कहते हैं ठीक है, बस जलम हुआ अनफुसहुम, उन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया, आखिरकार हमने इनको फसाना बना दिया और इन्हें बिल्कुल तितर बितर कर दिया, आज उनकी बातें ही रह गई। यकीनन इसमें निशानियां हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर हो। इनके मामले में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्होंने इसी की पैरवी की, सिवाय एक थोड़े से गिरोह के जो मोमिन था। इब्लीस को इन पर कोई इख्तदार हासिल ना था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन उसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ। तेरा रब हर चीज पर निगरान है। नबी मुशरिकीन से कहो पुकार देखो अपने इन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझे बैठे हो, वो न आसमानों में किसी जर्रा बराबर चीज के मालिक है न जमीन में, वो आसमान और जमीन की मलकियत में शरीक भी नहीं है, इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं। अल्लाह के हजूर कोई शिफात भी किसी के लिए नफामंद नहीं हो सकती सिवाय उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। हत्ता के जबकि लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया, वो कहेंगे ठीक जवाब मिला, और वो बुजुर्ग को बरतर है। आप देखिए कितनी क्लियर आयत है ना, शिर्क से बचने की, सिफारिश की असल की। इसके बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा की 80-90% आबादी क्यों शिर्क का शिकार है, वजह आप बता सकते हैं? वस्कुर नमा युतलफी बुयूती कुन्ना पे अमल नहीं हो रहा, कुरान के तालीम को हमने पर्दों में रखा हुआ है। आज सिर्फ कुरान का लफ्जी तर्जमा आम कर दें, बा मुहावरा आम कर दें। मैंने उस जिहाद बिल कुरान के बारे में सूरह फुरकान की आयत में ये जिक्र किया था कि आपको अगर दुनिया से शिर्क खत्म करना है ना, इतना आसान है, आप यहां सीखें उसके बाद आप अपने अपने मुल्कों में जाएं। अगर अल्लाह आपको मौका दे पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां बहुत शिर्क फैलता है, आप अपने अपने गांव के, अपने अपने इलाकों के लोगों को बैठकर सिर्फ कुरान का तर्जमा सुना दें और उनसे कहें आप बताओ इसका क्या मतलब। उनको लंबी तफसीरें नहीं चाहिए, उनको कहां ये कॉन्सेप्ट चाहिए जो हम यहां बैठ के वेस्ट के मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, उनको सिर्फ कुरान से तर्जमा सिखा दे, आप देखेंगे उनको पता लग जाएगा कि ये आयतें तो साफ बोल रही हैं कि शिर्क ना करो, किसी की सिफारिश ना करो, लेकिन चूंकि आज कुरान को जुजदानों में छुपा कर सिर्फ बरकत के लिए रखा, बंद किताब की आज ताजीम बहुत है, खुली किताब पढ़ने वाले आज कितने हैं, हम खुद देख लें। हम अपने ऊपर इसको लेकर सोचें कि जब तक इस किताब को खोलेंगे नहीं, इसका असल पैगाम आम नहीं होगा, दुनिया से शिर्क तो क्या किसी छोटी बड़ी बुराई का खात्मा हो नहीं सकता। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, हमें जरिया बना ले आज के दौर में अंधेरों को रोशनियों में बदलने का। क्या तरीका है, हाय बड़ा अंधेरा, हाय बड़ा अंधेरा, अंधेरा अंधेरा, क्या करें आप, छोटा सा चिराग जला दें, चिराग से चिराग जलते जाएं, अपनी एफर्ट अपनी कोशिश डाल दें, फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह ताला अंधेरा अंधेरा कहने से कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी कैंडल आप जलाएंगे ना, पूरे हॉल में कहीं ना कहीं तो रोशनी उसकी पहुंचेगी, फिर उसके बाद एक और कैंडल, एक और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद लोगों के अंदर ये सब कुछ आम होने लगेगा। फिर इसके बाद फरमाया ए नबी कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ध, इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है। कोई गांव का लोग होंगे वो कहेंगे दाता साहब देते हैं जी, वो करनी वाले करते हैं, कहा नहीं, कहो अल्लाह देता है। अब ला मुहल्ला हम में और तुम में से कोई एक हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा है, इनसे कहो जो कसूर हमने किया हो इसकी बात पुरस तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी जवाब तलबी हमसे ना की जाएगी। कहो हमारा रब हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसले करेगा, वो ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। सोचिए अल्लाह की ये सिफत, हाकिम, क्या अल्लाह को हाकिम मानती हूँ? हाकिम कौन होते हैं, मुल्क के हुक्मरानों को क्या कहते हैं, उनके बनाए हुए लॉस मानते हैं कि नहीं मानते? तो अल्लाह के लॉस भी मानने हैं और वो जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन सी हस्ती हैं जिन्हें तुमने इनके साथ शरीक लगा रखा है, हरगिज नहीं, जबरदस्त और दाना तो वो अल्लाह ही है। ऐ नबी हमने तुमको तमाम इंसानों के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा, लेकिन हाल क्या है, हाईलाइट कर ले, वला किन अक्सर अन्नास इला यालमून, लेकिन अक्सर लोग तो जानते ही नहीं है। जरा उम्मते वसत होने के नाते इस आयत पे 3 सेकंड गौर करें। आज इंसान क्यों नहीं जानते कि अल्लाह के नबी बशीर और नजीर थे? क्योंकि उम्मते मुस्लिमा ने उम्मते वसत का किरदार अदा करने से इनकार किया हुआ। हम कहते छोड़ो, इनको क्यों छेड़ते हो? देखिए, बाज़ लोग इस पे भी बड़े ऑफेंड होते हैं कि किसी को काफर कहो के ना करो। थोड़ा सा समझ लीजिए इस मसले को, आप में से भी किसी का ये इशू हो सकता है। आप कहते फलां काफिर है, फलां ने अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, अल्लाह के लॉज को नहीं मानता। तो कुफर के शेड्स होते हैं, जैसे ब्लैक है ना, ग्रे होगा, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, होते होते कहीं वाइट होता है। तो किसी को, कोई अल्लाह को नहीं मानता वो तो मुतलिकन काफिर है, एथियस्ट। कोई अल्लाह को मानता उसके हुक्म को नहीं मानता, डिनायल फॉर्म में है, कहता है मैं नहीं मानता अल्लाह है, कोई है, या मैं इस्लाम को नहीं मानता, उसने तो खुद ही कह दिया वो काफिर है। फिर कुछ है वो मुंह से कहते हैं हम हैं अहले किताब है, मानते, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते। तो कुफर का दर्जा कम होता जाएगा। मैं अक्सर जब भी लफ्ज़ बोलती हूँ तो कुफर के लफ्ज़ को आप नोट करिएगा, ना शुक्री बोलती हूँ। तो इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होता कि ना शुक्रापन है। एक मुसलमान होने वाला 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो वो ना शुक्र है। अब आप कह के नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, लोग बहुत माइंड करेंगे। तो आप ये कह दें एक मुसलमान है और वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो ना शुक्रापन है, तो कोई इस पर एतराज कर सकता है? और सच, ना शुक्र शख्स ही काफिर होता है। रात को काफिर कहते हैं ना, तो काफिर कौन होता है? जो अल्लाह को ना पहने, उसकी बातों को ना माने और उसके हुक्मों को ना माने। तो इसीलिए ऐसे तमाम कुफर को खत्म करने का एक ही तरीका है कि लोगों को अल्लाह की कदर दिला दो कि अल्लाह कितना जबरदस्त और कितना बड़ा है। फिर फरमाया, ये लोग तुमसे कहते हैं वो क्यामत का वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो कहो तुम्हारे लिए कैसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिसके आने में ना एक घड़ी भर की ताकीद तुम कर सकते हो और ना एक घड़ी पहले ला सकते हो। अपॉइंटेड टाइम है, ये अपॉइंटमेंट मिस नहीं, वो क्यामत आएगी, एक सेकंड में आ जाएगी, किसी को उसमें कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी। अब आगे हाईलाइट कर लीजिए, हर दौर में लोगों की इस किताब के साथ जो मामले रहे। وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن, ये काफिर कहते हम हरगिज इस कुरान को नहीं मानेंगे। तो ना मानो सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि और ना इससे पहले आई भी किसी किताब को तस्लीम करेंगे। वजह, क्योंकि ये पाबंदियां लगाती हैं। काश तुम देखो इनका हाल उस वक्त जब ये सालिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे। इस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे। जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे अगर तुम ना होते ना तो हम मोमिन होते। नोट कीजिए, अंधी तकलीद करने लगे, फॉलो ब्लाइंडली, वो उस दिन जाके उनको देखकर कितना गुस्सा खाएंगे, कहेंगे हम तो दबे हुए थे। दबे हुए से क्या मुराद है? कि हम तुमसे मरूब थे, हम इम्प्रेस थे, हम तुम्हारी बातों को आंखें बंद करके ले लेते थे। तुम ना होते तो आज हम बड़ी हिदायत वाले होते। इसका जवाब भी सुन लीजिए, वो बड़े बनने वाले इन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें इस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी? कोई रोकते किसी को? नहीं। कहा नहीं, बल्कि तुम ही खुद ही मुजरिम थे, तुम्हें खुद हमारे तरीके अच्छे लगते थे, हमने कब बाय फोर्स तुम्हें कहा, बाय हुक और बाय क्रोक? कोई नहीं कहता कुफर पे आ जाओ, कोई आपको आज जबरदस्ती अपने दीन में नहीं शामिल करता, कोई आपको जबरदस्ती किसी गलत फैशन पे नहीं लाता, आपको गलत तरीके पे नहीं लाता। कोई सिगरेट पीने वाले को फोर्स करता है सिगरेट पियो, कोई ड्रग्स जो लेता है उसको कहता है ड्रग एडिक्टेड हो जाओ, कोई स्टोर है आपको जबरदस्ती करता है कि ये चीजें हमसे खरीद लो अब हमने बना ली है। जो करता है इंसान अपने शौक से करता है। तो इसलिए कल क्यामत के दिन कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। फरमाया, वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वालों से कहेंगे नहीं, बल्कि शब रोज की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफर करें और दूसरों को इसका हमसर ठहरा दें। वह सरुन्नदामा, आखिरकार ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम इन मुनकरीन के गलों में तौक डाल देंगे। क्या लोगों को इसके सिवा और कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे आमाल उनके थे वैसी ही वो जजा पाए? तो जिसको आप लिख लीजिए, कर जैसी करनी वैसी भरनी। अब अल्लाह ताला बताते हैं कि हम कौमों के साथ मामला कैसे करते हैं। वमार सल नफी करजत में नसीर इल्ला काल मुतरफूहा, कभी ऐसा ना हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए इसको हम नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज़ सज़ा पाने वाले नहीं। ए नबी, इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नफा तुलाता करता है, मगर अक्सर लोग इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, ज्यादा रिस्क वाला होना भी अल्लाह की रजा वाला होना नहीं है और कम रिस्क वाला होना अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं है। फरमाइए ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो, यानी ये माल और औलाद देखकर हम तुम्हारा खुश नहीं होंगे। हाँ मगर कौन, इल्ला मन आमन व अमिला सालेहन, मगर जो ईमान लाए और नेक अमाल करें, यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी जजा है और वो बुलंदो बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखलाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुबतला होंगे। कितना खूबसूरत तबसरा है ना। देखिए इंसान किसी चीज को क्यों बढ़ाता है, ताकि उससे फायदा हो, इज्जत मिले, माल मिले, शोहरत हो, दुनिया में साजिश हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे माल ज्यादा हो गए तो मेरे करीब तो नहीं हो गए। अबू बकर तो अल्लाह के करीबी थे, क्या अपने माल की वजह से थे? नहीं, बल्कि इल्ला मनामन व अमिला सालेहन की वजह से थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर थे, बहुत दौलतमंद थे, इसलिए अल्लाह को प्यारे लगते थे कि माल बहुत है? नहीं, इसलिए थे कि अपना सब देकर अल्लाह के रास्ते में अपना दीन ईमान बचा कर आ गए। आप देख लीजिए कि अब्दुल्ला बिन उबई बहुत अमीर था, तो क्या अल्लाह की नजर में उसकी कोई कदर बनी? अबू लहब बहुत अमीर था, खूबसूरत था, कुछ बना? तो ये चीजें देकर अल्लाह को मरूब नहीं कर सकते, क्योंकि उसी ने दी हुई है। अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं? खुद से पूछिए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह को मैं अच्छी लगूं? ऑफ कोर्स चाहते हैं, क्योंकि यहां तकर्रुब की बातें हैं ना। तो मना मनवा मिला सवाल, अपने माल और औलाद से नेकियां कमाएंगे तो अल्लाह को प्यारे लगेंगे। फौलाई कलहम जजाओ दीफ भी मामिलू, दुगनी जजाएं। ये क्यों? बड़ा मुश्किल होता है अपनी चीज अल्लाह को देना। आप देखिए कि अगर हम इसको दुनिया की मिसाल से समझते हैं, मिसाल है कि हम यहां रहते हैं, मैं अपनी मिसाल हूं, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, खाते पीते घर भी अच्छा, सब अच्छा है। मेरे रिश्तेदारों को मेरी ये दौलत माल क्यों अच्छा लगेगा? कहीं तो मुझे हसद करेंगे, कोई जलेंगे, कोई कोड़ेंगे, कोई बातें करेगा, अच्छा जी बड़ा पैसा इनके पास, बहुत माल है, बहुत कपड़े हैं। मेरे कौन से रिश्तेदार मेरे इस माल और मेरी दौलत को अच्छा कहेंगे जिनसे मैं शेयर करूंगी? वो ये कह सकेंगे हाँ माशाल्लाह अल्लाह ने इनको दिया, ये हमारा भी ख्याल रखती है। तो दुनिया वालों को भी जब हम अपने माल और औलाद से या माल और नेमतों से फायदा देते हैं तब वो उससे खुश होते हैं, तो अल्लाह के यहां तो मामला इससे बहुत बड़ा है। इसलिए इन चीजों से ना इंसानों की नजरों में हम बड़े हुए, ना अल्लाह की नजरों में बड़े हुए। फरमाया हाँ जब तुम दुनिया में अल्लाह के साथ अपनी चीजों को शेयर कर देते हो, वहुम फिल गुरुफात यामिनून, ये वो लोग हैं जो बुलंदो वाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखलाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, वो तो अजाब में मुबतला होंगे। ऐ नबी इनसे कहो, मेरा रब अपने बंदों में से जिसको चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो इसकी जगह तुमको और भी दे देता है, और वो सब रासिकों से बेहतर रासिक है। क्या पता चला कि जितना अल्लाह के रास्ते में देते हो उतना वापस आता है। आपको पता है एक असूल है कि जब आप किसी को ब्लड देते हैं तो आपका जिस्म उतना ब्लड और प्रोड्यूस कर लेता है। सुनी भी है ये बात? इसीलिए जो लोग ब्लड दे देते हैं 2-4 दिन या मे बी फ्यू आवर्स के बाद उनके पास उतना ब्लड आता है, यही यहां कहा गया। तो ये तो फिर और भी मजे की बात है कि आपका तो कम नहीं हुआ बल्कि दूसरों को आपसे फायदा हो गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इससे ये फायदा उठाने की जरूरत है। और रह गई बात रिस्क, तो वो तो अल्लाह के हाथ में है, और जिससे वो तमाम इंसानों को जमा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? तो वो जवाब देंगे कि पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से, दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। इस वक्त वो कहेंगे आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अजाब जहन्नुम का मजा जिससे तुम छुटलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ सफाइतें सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको तुम्हारे माबूदों से बदगुमान कर दे, और जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते हैं। देखिए यही थ्रेटनिंग आज भी है, जब कोई सच्ची बात करेगा तो कहेंगे ये बस ऐसे ही तुम्हारे लिए मुश्किल कर रहे हैं, बाप दादा जो दीन पे चल रहे थे तुम भी उसी पे चलते रहो। अच्छा, और इससे भी बढ़ के जरूरत क्या हुई? कहने लगे और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है, नऊज़ बिल्ला, खड़ा हुआ इन काफिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया ये तो खुला जादू है, हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि इसे पढ़ते हो, और ना तुमसे पहले इनको कोई आगाह करने वाला भेजा। इनसे पहले गुजरे हुए लोग छुटला चुके, जो कुछ हमने इनको दिया उसके तो उश्रे अशीर को भी ये नहीं पहुंचे। उश्रे अशीर क्या होता है आपको होता है? 10वें हिस्से को। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि आज लोगों को जो दौलत या माल औलाद मिली है वो पहले लोगों की दौलत का तो 1/10 भी नहीं है, और ये ट्रू है, सच है। और आप दिन ब दिन आप देखिए कि ये बात और भी खुल के सामने आती जा रही है कि अपेरेंटली बहुत बड़े बड़े मुल्क और वो लोग जो बहुत जिनका नाम और डंका है, रियलिटी में उनके पास वो कुछ नहीं है जो पहले दौर के आम लोगों के पास भी होता था। मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो कि मेरी सख्त सजा कैसी थी। ए नबी, इनसे कहो मैं बस तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूं, मैं और आप भी अब इसी में लेंगे, ये सूरत की आखिरी आयतें जिसमें हम सबको गौर व फिक्र की दावत दी। सुन तो बहुत कुछ लिया अभी तक इन 21-22 पारों में। इस्लाम के बारे में या नबी की किसी बात या कुरान के किसी में या किसी पढ़ने पढ़ाने वाले की बात सुनकर शक पैदा हो, ये सख्त बात कर रहे हैं, ये मुश्किल डाल रहे हैं, ये परेशानी कौन है और ये दीन काबिले अमल नहीं, अब इससे ज्यादा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना पढ़ो ना सीखो ना अमल करो, चुपके से बैठे रहो, जो सब कर रहे हैं वही करते रहे, बहुत आसान होगा। लेकिन इस आयत पे जरा गौर कीजिएगा, ए नबी इनसे कहो, किनसे कहो, जिनका दिल नहीं चाह रहा कुरान को मानने का, क्या कहो, मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूं, जिसको आप कहते हैं ना पल्ले से बांध लो, खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो, यानी अकेले में ज्यादा अच्छा सोच सकते तो अकेले बैठ जाओ। बाद जब अकेले में कुछ बात समझ नहीं आती तो क्या बडीज बना लो, लाइक माइंडेड लोगों को लेकर बैठो और सोचो, खूब सोचो, खूब सोचो, अल्लाह दीन इस्लाम कुरान दुनिया आखिर जो कुछ पढ़ चुके हैं सोच के देखो, फिर बताओ तुम्हारे साहिब में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो। क्या आखिर ये बताने वाले समझाने वाले दीन वाले, इनको हमसे लेना क्या, कोई जन्नत लेनी है हमारे इससे कि उस पर नाजायज कब्जा करना, दुश्मनी है, कोई ससुराली ताल्लुक है, ये हमें कोई मुश्किल में डाल रहे हैं, ये नबी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आज भी लोगों को मौलवी कहकर मत झुठलाओ, मौलवियों के लतीफे ना बनाओ, सोचो आखिर इनको तुमसे लेना क्या। और आप सोच के देख लीजिए, जो बंदा बेजरर होगा ना, यानी जिस बंदे ने आपसे ना कुछ लेना ना देना ना कुछ और करना, अगर वो आपको अल्लाह की बात बताता है तो उसको सोचो कि उसको क्या मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल अगर मक्का वालों को वो बातें बताई जो अल्लाह चाहता था, मक्का वाले दुश्मन हो गए, मान लिया, याद रखे वो दुश्मन रहे नहीं। जो हक बोलता है ना बाजार लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन दिल में वही बात आती है। लोरियां देने वालों को खुशी से आप सुन ले, बात कर ले, उनकी ले ले, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं होता। और यही हुआ, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुव लकुम, इनसे कहो अगर मैंने इस पर तुमसे कोई अजर मांगा है तो वो तुमको मुबारक, यानी मैं तुमसे कुछ नहीं लेता इस काम पे, अगर मैंने कभी तुमसे कोई माल मांगा, कोई इज्जत मांगी, कोई तोहफा मांगा, कोई लिया, तो तुम्हें मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। कह लीजिए कि इतना ज्यादा लाउबाली वही शख्स हो जाता है जिसको लोगों से कोई नफा नुकसान नहीं चाहिए, उसको इतना पता है कि मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, मैंने अल्लाह की बात बता के जानी है और जिस रंग में वैसे ही बतानी है, ना कमी करनी है ना ज्यादती करनी है, तो अल्लाह ताला फिर उस बात को अपने जिम्मे ले लेता है और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो मेरा रब तुम पर हक का इल्का करता है, वो तमाम पोशीदा हकीकतों को जानने वाला है, कहो हक आ गया और बातिल चला गया। सोचिए, कुल जाल हक व मा युब्दिल बातिल व मा युईद, सूरह बनी इसराइल याद आई आपको, यहां आयत क्या है, कुल जाल हक, कह दीजिए हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता, यानी बातिल को अब दुम दबा के जाना ही पड़ेगा। कहो अगर मैं गुमराह हो गया हूं तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूं तो इस वही की बिना पर हूं जो मेरा रब मुझ पर नाजिल करता है, वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। अब अल्लाह क़यामत की एक झलकी छोटी सी देते हैं कि आज नहीं दिल जा रहा हिदायत पे आने को, तो सोच लो, वलो उतराइज फजीउ फला फौ तवाखिजु मिन मकानिन करीब, काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जबकि ये लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे और कहीं बच कर जाने की राह ना पा सकेंगे, बल्कि करीब ही से पकड़ लेंगे, यानी दूर नहीं जाएंगे अल्लाह से, बस पास ही अल्लाह उनको पकड़ेगा, उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान लाए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है। उर्दू में भी हम कहते हैं ना, क्या पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, आज मौका है हिदायत की दावत को कबूल करने का, कल जब ये चला जाएगा मौका तो फिर कुछ नहीं होगा। कल एक सिस्टर से बात हुई किसी जगह पे, तो वो बहुत अच्छी सिस्टर मुझे लगी, शी वॉज वेरी नाइस, तो कहने लगी मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैं शुरू से क्यों नहीं आई दौरे कुरान में, शुरू में नहीं आई हूं ना, तब रोज सुस्ती डिले ही करती जा रही हूं, और खुद कह रही थी कि अगर मैं आती पहले दिन में शुरू से तो मुझे पता है कि मैंने आना था, अब नहीं आई तो नींद आती है, सुस्ती आती है। और इट्स ट्रू, क्या ये 20 पारे वापस आ सकते हैं? 21 पारे जो हम पढ़ चुके, वो रीप्ले, वो वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये वक्त नहीं आएगा। आप तो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए ना, जब ये दौरे कुरान एडिट होगा और जब ये लोगों को जाएगा, तब आप लोगों का जिक्र होगा कि ये यहां हुआ था, इन लोगों ने सुना। आप अगर खामोशी से आगे यहां बैठ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है? आपका हिस्सा नहीं, आप साइलेंट पार्टनर हैं इस काम के, तो ये अल्लाह की देन होती है। जैसे सबीलुल जन्नत कोर्स मैंने नॉर्वे में कराया था, आज से 4-5 साल पहले, आई डोंट नो, मुझे साल याद नहीं रहते, बस मैं एक रफ सा गैस करती हूँ। 5 साल पहले हमने नॉर्वे में पहला कोर्स किया। हुआ क्या था कि दौरे कुरान के लिए गए थे, फिर रो के लिए गए, पहले समर कोर्स के लिए बुलाया, फिर उसके बाद दौरे कुरान हुआ। किस्सा मुख्तसर ये कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको तो हमें पूरा कोर्स कराना है। इतना बड़ा फैसला था अमेरिका से छोड़ के नॉर्वे जाना, इट वॉज बिग डील। हम गए सिर्फ थोड़े के लिए थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, जब उनकी कमिटमेंट देखी और एक दुनिया का निग्लेक्टेड हिस्सा था, वो कहते थे यहाँ तो कोई है ही नहीं है, अमेरिका में बहुत है, कनाडा में बहुत है, आप हमारे पास आए। एक बिग जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वल्लाही वो। और मेरे लिए ये सवाल हमेशा बड़ा मुश्किल रहा है कि कोई ये कहे कि आ जाए और आप, या मैं कह दूं कि मैं नहीं आ रही। बहरहाल लंबी कहानी है, फिर कभी सुनिएगा अगर आपका दिल चाहा। लेकिन जब हम वहां ह्यूस्टन में थे उस वक्त, ह्यूस्टन से वाइंड अप करना कोई छोटी बात है, उनसे इजाजत ली कि आप इतने कमिटेड हैं तो कमिटमेंट दीजिए। खैर, उन लोगों ने जो बेचारे अपनी जान दिल माल खोल सकते थे, उन्होंने कमिट करके दिया कि आप करें। मैंने कहा फिर मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, कोई मैं ऐसे तो नहीं आई थी ना। खैर, उन्होंने कहा जाए, मुझे याद है अक्टूबर का एंड था शायद, तब रमजान इस तरह सेप्टेम्बर अक्टूबर में आता था। हम वापस आए, 1-1.5 महीने का टाइम लिया उन लोगों से करके इधर। वो मेरे लिए दिन कभी नहीं भूलने के, जो मैंने वो वक्त, मैं कहती हूँ एक थ्रेश होल्ड से मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए, वरना आज भी हम उसी जगह बैठे होते जहां थे। बड़ा मुश्किल होता है वल्लाही, खुरच के जैसे वो अंदर से चीजें निकलती हैं। कोई आसान है? रिश्तेदार, घर, कारोबार, अपना जगह, सब छोड़ छाड़ के यूं हाथ में 2 सूटकेस लेके निकलना, और वो चीजों को तो मारें गोली, जो रिश्ते, जो मोहब्बतें, जो जज्बाती बातें, और आगे क्या होगा। लेकिन मैं कहती हूं कि उस एक फैसले ने उन लोगों को किस तरह इसका हिस्सा डाल दिया। उनको कोर्स कराया था सबीलुल जन्ना, सीधे साधे लोग नॉर्वे के, वल्लाही। लेकिन वो कोर्स इस वक्त मेरे गुमान के मुताबिक, अगर मैं इधर उधर रफली देख लूं तो 40-50 क्लासों में तो चल चुका है या चल रहा है। और ये तो हमें पता है, जो नहीं पता वो नहीं पता। जहां लफ्ज़ सबीलुल जन्ना आता है कोर्स का, क्लास का, उसके ऑडियंस का, मुझे वही क्लासरूम याद आता है जहां बैठ के पढ़ाया था। वो भी रोते हैं, मैं भी रोती हूँ कि ये नॉर्वे के नसीब में थी ने कि अब वो क्या, वो सेट जो लोग सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो उनका हिस्सा नहीं उसमें पड़ रहा। तो ये नसीब की नेकियां होती हैं। ये दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसी नेकी करने वाला बना दे जो हमारे बाद नस्लों तक जाए। इसी बात को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम सोच लो, तुम्हारी बात है, कयामत के दिन की वो धमाके, अब कहां वो चीजें वापस आएंगी। जिन्होंने वो कोर्स नहीं किया था वो पछताए, अगले साल आए, दूसरे साल भी आए, तीसरे भी कुछ लोग आए, कोई मजबूरियों की नजर चले जाते, बहुत थोड़े लोग उसमें खड़े थे माशाल्लाह। मैंने देखा जिन्होंने कमिट किया था वो चलते ही गया आगे, कुछ की मजबूरियां थी वो अगले सालों में आए, लेकिन जो पहले साल की बात बन गई थी वो उनके लिए बन चुकी थी। तो याद रखिए, ये जिंदगी के मौके होते हैं। हिदायत का दरवाजा हमेशा नहीं खुला रहेगा, बल्कि आप कहिए कि हिदायत तो एक गयूर मेहमान है, बहुत रिस्पेक्टफुल मेहमान है, आके आपके घर का दरवाजा नॉक करेगा। उसको पता है आप अंदर, आप डोर नहीं खोल रहे ना, 1-2 मिनट रुकेगा फिर चला जाएगा, फिर नहीं आएगा आपके घर, बैठे रहो आराम से, मुझे पता है तुम अंदर थे, तुमने डोर नहीं खोला। तो जब दिल हिदायत को चाह रहे हो ना, तो उस वक्त लब्बाई कह देना चाहिए, उस वक्त फिर बेखतर कूदे। और होता क्या, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा थे। मैं देखिए आज फिर नॉर्वे से निकल के अमेरिका आई, आप, मेरा ये ट्रिप आपके नाते से बहुत यादगार है कि मेरा यू टर्न शुरू हो गया ना, क्योंकि जब नॉर्वे में गए तो फिर उधर से आगे अल्लाह ने काम खुलवा दिए। नॉर्वे 2-4 साल लगे, फिर लंदन चले गए, लंदन के नाते अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द में थोड़े थोड़े काम शुरू हुए, फ्रांस में काम हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, इधर उधर पूरे 2-2.5 साल रहते रहे। अब जब मैं इधर वापस आ रही थी तो मेरे लिए एक बहुत जज्बाती वक्त था कि देखो वक्त गुजर ही गया ना, 5 साल गुजर गए, और जब यहां से हम गए थे, यकीन करें लोगों ने मोहब्बत में, प्यार में, अजमाई के, या कोई हंसी में कहता होगा या कि क्यों जा रहे हो, कोई प्यार से, कोई कोई इतनी, क्या तुमने 52 स्टेट्स को पढ़ा लिया जो वहां जाओगी, डॉलर छोड़ के क्रोन पे जा रहे हैं। मैंने कहा अगर हम पैसों के लिए जाते तो कभी ना जाते, और लोगों के लिए जाते कसरत किल्लत पे तो कभी ना जाते। हमारा तो एक ही काम है कि अल्लाह हमारे जरिए कुरान का ये नूर घर घर पहुंचा दे। तो अपनी जान से, अपने माल से, वक्त से मोहब्बत करते, ये नेकियों के मौके मुझे मिलते। इतने प्यारे साथी जो मुझे इन 4-5 सालों में मिले, ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एसेट है। वो कैसे भी लोग हों, वो कोई भी हो जो मुझे मिले, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए अगर थोड़ा सा छोड़ा, मेरे शौहर ने अगर कुछ छोड़ा, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा मिल गया, तो मौका अवेल हो गया। और मैं एक दफा कहती नो 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 हम नहीं कर सकते, तो मेरे नसीब में हो सकता है वही शहर होता जहां मैं थी और मैं वहीं बैठी कुछ कर रही होती। तो याद रखिए, अल्लाह ताला आपको बार बार मौके नहीं देता। कभी आपके बच्चे को एक जॉब ऑफर होती है, आप ऑफर कबूल कर लेते हैं, तरक्कियों के रास्ते खुल जाते हैं माशाल्लाह। होती वो छोटी सी जॉब है, अल्लाह उसी के बाद उसको इतना बड़ा अफसर बना देता है वहां। तो अल्लाह ताला यहां यही कह रहे हैं, कियामत के मैदान में खड़े इंसान को कहा जाएगा, अब गया वक्त कहां वापस आएगा, इससे पहले कि ये कुफर कर चुके थे। और यहां कुफर, इनकार, ना शुक्री, पहले ना शुक्रिया कर दी, अब कहां वापस आएगी। लेकिन याद रखिए, वहां जाके वापस नहीं आ रहा, यहां आज भी मौजूद है। आज मेरे और आपके अपने हाथ में अपने नाम अमाल को अनडू कर सकते हैं। यहां हम अपने गुनाह भी डिलीट कर सकते हैं, नेकियों के रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। एक दफा मौत की खिड़की से गुजर के उधर चले गए, देन देर इज नो वे, देर इज नो यू टर्न आफ्टर कबर। कबर के अंदर गए, बस अब आगे एक आगा सफर है, कोई इधर के पीछे के रास्ते नहीं है। और अल्लाह तआला कहते हैं, वही लबई नहुम बबई नमा यश्तहून कमा फुई लबी अशियाई मिन कब इन्नहुम कानू फी शक के मुरीब। ये मसला है जो लोगों को हिदायत की तरफ आने नहीं देता। कहा इससे पहले ये कुफर कर चुके और बिला तहकीक दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। कुरान सुन्नत के करीब रहने के बजाय दूर की कौड़ियां ला के लोगों को मसले समझाते थे। एक्चुअली एक्चुअली और वजह ये और दिस एंड दैट। इस वक्त तो जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे, इससे महरूम कर दिए जाएंगे। उस दिन जिस जन्नत की तमन्ना है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले दुनिया में कुरान सुन्नत को छोड़कर इधर उधर बहके हुए थे। इनके तो और ही बहुत सारे शुगल थे, मसरूफियात थी और बहुत सारी थी। जिस तरह इनके पेश रो अब हम मशरब महरूम हो चुके हैं, ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। अपनी असल के साथ हर बंदा चाहता है हिदायत की तरफ आना, लेकिन रास्ते की रुकावटें आने नहीं देती। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन रुकावटों को दूर कर दे। जी आयत 46 से हम लोग तिलावत करते हैं। आप ऊंची पढ़िए। से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिलों के शक दूर कर दे, और अल्लाह ताला के दीन को हम पूरी कमिटमेंट और शौक के साथ ले सकें और इस बात का यकीन रख लें कि इसी किताब को मानने और सुनने और पढ़ने में हमारी दुनिया की भी कामयाबी है और हमारी आखिरत की भी।